हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आदित्य ने रवि की ओर देखते हुए कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन वो सिर्फ घबराहट के कारण हुआ था। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रवि तुम्हें हेल्प करेगा और यहाँ से ऑफिस तक के रास्ते में वो तुम्हें समझा देगा कि तुम्हारा काम क्या है। क्यों रवि, संभाल लोगे ना अपनी नई बॉस के साथ मिलकर? रवि ने सिर हिलाया और सुनैना से कहा, मैम इट्स नॉट डिफिकल्ट, हो जाएगा, और वैसे भी अब तो सब कुछ आपको ही संभालना है। सुनैना ने आदित्य की ओर देखते हुए पूछा, रवि तुम आदि ये क्या बोल रहा है? आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, सच बोल रहा हूँ और क्या। वो उम्मीद भरी निगाहों से सुनैना को देखने लगा। सुनैना उसकी बात पर सोच में पड़ गई। बाहरी शूटिंग स्थल। 2 घंटे पहले ही नैना की उड़ान उतरी थी और वो सभी के साथ एक रिजॉर्ट में पहुंची, जहां पूरी फिल्म की कास्ट के लिए अलग अलग कमरे बुक किए गए थे। सुनैना के लिए एक लग्जरी कमरा बुक हुआ था, क्योंकि वो फिल्म की द्वितीय प्रमुख अभिनेत्री थी। नैना को अपना कमरा बहुत पसंद आया। शावर लेने के बाद उसने कुछ देर आराम किया, फिर उसने समय देखा, शाम के 5 बज रहे थे। उसे अक्षत की याद आ रही थी। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और अक्षत का नंबर डायल किया, लेकिन शायद अक्षत इस वक्त शूटिंग में व्यस्त था और उसका मोबाइल फोन उसके सहायक अजय के पास था और साइलेंट पर, इसीलिए नैना का फोन कॉल रिसीव नहीं हुआ। नैना को पता था कि अक्षत की भी शूटिंग चल रही होगी और वो व्यस्त होगा, इसीलिए उसे इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। उसने अपना मोबाइल फोन अलग रखा और कमरे की खिड़की पर आकर खड़ी हो गई। शूटिंग लोकेशन एक हिल स्टेशन था, क्योंकि उन्हें अपनी फिल्म के लिए ऐसी ही जगह चाहिए थी। नैना को वो जगह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो खिड़की पर खड़ी मज़ा ले रही थी, तभी उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। कौन है? नैना ने अंदर से आवाज़ लगाकर पूछा। रूम सर्विस मैम, बाहर से एक लड़की की आवाज़ आई। नैना ने आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा खोला। वो लड़की ट्रॉली लेकर गुड इवनिंग कहती हुई कमरे के अंदर आई और ट्रॉली नैना के सामने रखते हुए बोली, मैम आपकी कॉफ़ी और इवनिंग स्नैक्स। पर मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, मुझे लगता है आप गलत कमरे में ये लेकर आ गई हैं, नैना उलझन में जवाब दिया। नहीं मैम, असल में आपके साथ जितने भी लोग आए हैं उनके सभी कमरों में ये कॉम्प्लीमेंट्री भेजा गया है हमारी रिजॉर्ट की तरफ से, क्योंकि आप लोगों ने साथ में 25 कमरों की बुकिंग की है, इसलिए। उस वेट्रेस ने मुस्कुराते हुए नैना को बताया। ओके थैंक्स देन, नैना ने भी मुस्कुराते हुए कहा। वेट्रेस ने कॉफ़ी और स्नैक्स नैना के कमरे की मेज़ पर रखे और ट्रॉली लेकर कमरे से बाहर चली गई। नैना ने फिर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और खिड़की पर खड़ी होकर बाहर का नज़ारा देखते हुए अपनी कॉफ़ी एंजॉय करने लगी। उसे इस वक्त अक्षत की बहुत याद आ रही थी। उसने बाहर की ओर देखते हुए कहा, अक्षत आई मिस यू सो मच, अभी बस कुछ घंटे ही हुए हैं और मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। काश तुम यहाँ पर मेरे साथ होते, हम दोनों यहाँ पर एक साथ होते तो ये नज़ारा और भी खूबसूरत लगता। इतना बोलते हुए नैना अपनी कॉफ़ी पी ही रही थी कि उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन की आवाज़ आई। उसने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया तो देखा कि प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक ईमेल आया है, जिसमें उसके पहले सीन के लिए स्क्रिप्ट भेजी गई है और डायलॉग्स याद करने के लिए कहा गया है। साथ ही उसे सुबह 6 बजे तैयार रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि उन्हें सुबह सूर्योदय के वक्त शूट करना है। वो पूरा मैसेज और ईमेल पढ़कर नैना थोड़ी उत्साहित हुई और अपने आप से बोली, ओ वाओ, इस जगह पर सूर्योदय देखने को मिलेगा, कितना ब्यूटीफुल होगा वो टाइम, काश मैं वो सब कैप्चर कर पाती, पर अभी मैं यहाँ काम से आई हूँ तो उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करना होगा, चलो डायलॉग्स ही याद कर लेती हूँ अपने। इतना बोलकर नैना ने वो स्क्रिप्ट फाइल ओपन की और उसे अपने बिस्तर पर लेटकर पढ़ने लगी। सिंघानिया कार्यालय भवन। तब जाकर किसी तरह सुनैना को मीटिंग में जाने के लिए मना लिया गया, लेकिन सुनैना ने शर्त रखी कि अगर आदित्य भी उसके साथ मीटिंग में जाएगा तो ही वो जाएगी। लेकिन आदित्य ने मीटिंग में जाने से साफ मना कर दिया और कहा कि अगर उसे मीटिंग में जाना ही होता तो वो सुनैना को जाने के लिए क्यों कहता। उन दोनों की ये बात सुनकर रवि बोला, मैडम सर पहले भी इस तरह की मीटिंग अटेंड नहीं करते थे, पहले भी वो किसी न किसी को इस काम के लिए ढूंढ लेते थे या फिर सब कुछ वीडियो कॉल पर अटेंड करते थे। सुनैना ने हैरानी से पूछा, तुम्हारे सर अटेंड नहीं करते तो फिर वो लोग मीटिंग करने के लिए जिद क्यों कर रहे हैं और बिना मीटिंग के सारा काम कैसे संभालते हो तुम आदि? आदित्य ने सुनैना को तसल्ली देते हुए कहा, अरे तुम्हारा पति बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और वैसे भी जब किसी इंसान को कोई काम नहीं करना होता है तो वो उसे किसी और से करवाने के 10 तरीके ढूंढ लेता है, और बस मैं भी यही करता था, लेकिन मुझे कभी भी सिंघानिया इंडस्ट्रीज का चेहरा नहीं बनना था और इसीलिए मैंने तुम्हें चेहरा बनाया है। इसीलिए जाओ और इस मीटिंग से शुरुआत करो। वैसे भी एक लाइन कोई इतनी जरूरी नहीं है हमारे लिए। अगर कोई गड़बड़ भी होती है तो मैं संभाल लूंगा। सुनैना ने एक गहरी सांस ली और कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन प्रॉमिस करो कि अकेले में तुम ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं करोगे और ना ही ज्यादा काम करोगे। तुम यहाँ पर आराम करना, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर ही वहाँ जा रही हूँ। आदित्य ने सिर हिलाते हुए कहा, आई नो, मुझे पता है, इसीलिए मैं भी तुम्हें निराश नहीं करूँगा। जाओ, मैं ड्रिंक नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। बाकी दवाइयाँ मैं भूल जाता हूँ, वो तुम आकर खुद ही खिला देना। सुनैना ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर रवि की ओर देखते हुए पूछा, कब है मीटिंग? रवि ने सुनैना को बताया, मैम असल में कोई समय तय नहीं है। उन्होंने बोला था कि सर जब भी समय हो पूरे दिन में किसी भी वक्त ये मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि आज के बाद उनके पास समय नहीं होगा, कल से वो किसी काम में व्यस्त हैं। सुनैना थोड़ा सोचते हुए बोली, ठीक है, ऑफिस में कॉल करो और एक घंटे में उन लोगों को मीटिंग के लिए बुलाओ। तब तक बाकी स्टाफ और सबको सब कुछ अरेंज करने के लिए कहो। हमें वहाँ पर उन लोगों से पहले पहुँचना है, क्योंकि मैं सब कुछ चेक करूँगी और मुझे थोड़ी डिटेल्स भी बता देना रास्ते में। सुनैना ने एकदम प्रोफेशनली ये सब कहा। रवि और आदित्य दोनों ही उसका मुँह देखने लगे। सुनैना ने जब उन दोनों को इस तरह अपनी तरफ देखते हुए पाया तो पूछते हुए बोली, क्या हुआ? वैसे क्या देख रहे हो तुम दोनों? कुछ गलत कहा क्या मैंने? आदित्य ने हैरान होते हुए रवि से कहा, गलत नहीं यार, एकदम सही, और तुम तो बिल्कुल प्रोफेशनल लग रही हो। क्यों रवि, इतना प्रोफेशनल तो शायद मैं भी नहीं हूँ। रवि ने भी हामी भरी। सुनैना मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए स्टडी रूम से बाहर की ओर चली गई। कहाँ जा रही हो सोना? आदित्य ने पीछे से चिल्लाकर पूछा। वो दोनों ही कन्फ्यूज हो गए थे। सुनैना ने आगे बढ़ते हुए जवाब दिया, कपड़े बदलने। इन कपड़ों में तो ऑफिस नहीं जा सकती ना, कुछ फॉर्मल पहन कर आती हूँ। रवि तुम कार निकालो, मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। वो अपने कमरे में कपड़े बदलने के लिए चली गई। उसके कमरे के अंदर जाते ही रवि ने आदित्य की ओर देखा। आदित्य ने हाथ खड़े करते हुए कहा, अरे इस तरह से परमिशन के लिए मेरी तरफ मत देखो रवि, अब से वही तुम्हारी बॉस है, इसलिए जैसा वो कहे वैसा ही करना और उसके साथ रहना, क्योंकि मैं जानता हूँ वो भले ही स्ट्रिक्ट और प्रोफेशनल है लेकिन उसे इन सब का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से उसे अनुभव हो। यस सर, मैं समझ गया आपकी बात, रवि ने सिर हिलाकर कहा। कुछ देर बात करने के बाद वो कार निकालने के लिए चला गया। सुनैना भी 10 मिनट में तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकली और नीचे उतरने वाली सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया और वो एकदम से स्टडी रूम की ओर आ गई। स्टडी रूम का दरवाजा खुला हुआ था और आदित्य आंखें बंद करके सोफे पर टेक लगाकर बैठा था। सुनैना दरवाजे से अंदर आई तो आदित्य को उसके कदमों की आहट लगी। उसने आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। जीन्स के साथ व्हाइट शर्ट और ऊपर से ब्लैक ब्लेजर में सुनैना बहुत ही सुंदर के साथ साथ बोल्ड और प्रोफेशनल लग रही थी। उसने नॉर्मल हील की सैंडल पहनी हुई थी और बालों की पोनीटेल बनाई हुई थी। आदित्य ने उसे पहले कभी ऐसे लुक में नहीं देखा था। उसने उसकी तारीफ करते हुए कहा, वाओ माय बॉस लेडी, क्या लग रही हो कसम से, अब तुम्हें ऐसे रेडी देखकर मेरा तो मन ही नहीं कर रहा कि मैं तुम्हें जाने दूं। सुनैना ने अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखते हुए थोड़ी घबराहट से कहा, हाँ मेरा भी मन नहीं कर रहा, इतना अजीब लग रहा है यार मुझे, ये सच बताओ ठीक लग रही हूँ या नहीं, और मैं तो बस इसलिए आई हूँ ताकि तुम मुझे सबसे पहले ऑल द बेस्ट बोलो, तुम्हारी बेस्ट विशेस के बिना मैं कैसे जा सकती हूँ आदि। आदित्य अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और आगे बढ़ते हुए उसकी तरफ आया। आदित्य ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बी कॉन्फिडेंट एंड बी योर सेल्फ, ये घबराहट तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करती है सोना, और मेरी बेस्ट विशेज वो तो हमेशा ही तुम्हारे साथ हैं, पर अभी कुछ अलग तरह से मैं बेस्ट विशेज दे सकता हूँ। सुनैना कन्फ्यूजन से उसकी तरफ देखने लगी। आदित्य आगे बढ़ा और उसके चेहरे के एकदम सामने अपना चेहरा लेकर आने लगा। आदित्य प्लीज नो, नॉट दिस टाइम, सुनैना ने अपना सिर हल्के से पीछे किया और उसे मना करते हुए बोली, लेकिन आदित्य ने उसकी बात नहीं सुनी और हल्का सा मुस्कुराते हुए उसने अपना चेहरा और आगे बढ़ाया। सुनैना ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपने होंठ भी अंदर की तरफ भींच लिए क्रमशः।